इस वक्त कोई भी किसी को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए फटाफट से वो सब के सब वहां से निकल चुके थे। लेकिन आहान रौनक को संभालते हुए वहां से आराम ले जा रहा था। अब आगे वहीं आस्था अब अरमान के साथ सीधा कार की फ्रंट वाली सीट पर बैठ गई थी। लेकिन अरमान ने एक बार भी आस्था की ओर देखना जरूरी नहीं समझा था। वो समझ चुका था कि ये लड़की जानबूझकर उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है, इसीलिए उसे आस्था से दूरी बनाकर रखनी होगी। वहीं आस्था अरमान को बार बार नजरें बचाकर देख रही थी और सोच रही थी कि अरमान जी की क्या हालत हुई। उसने अच्छा खासा सबक सिखा दिया और साथ ही साथ जिस तरह से अरमान ने उसे परेशान किया था उसका बदला भी उसने उससे ले लिया है। इस वक्त ये सब सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। जल्द ही वो दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। अब अरमान ने जैसे ही तिरछी नजरों से ये देखा कि आस्था बार बार मुस्कुरा रही है तो उसके माथे पर गुस्से की नसें उभर आईं। वो सोचने लगा कि आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह से मन ही मन कैसे मुस्कुरा सकती है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है। हाँ, लेकिन वो चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था, मैं इसके साथ था इसीलिए इसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपने किसी साथी को मिलने के लिए भी नहीं बुलाया, शायद ये एंग्री बर्ड मुझसे डर गई होगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की का भेद फटाफट से सबके सामने खोलना होगा और इसे यहाँ से चलता फिरता करना होगा, नहीं तो ये लड़की मुझे पागल कर देगी। यही सब सोचते हुए वो घर आ पहुँचा और आस्था को अनदेखा करके वो चुपचाप सीधे अपने कमरे में चला गया। वहीं आस्था अभी भी अरमान को देखते हुए मुस्कुरा ही रही थी। जिस तरह से अरमान की हालत हो गई थी, उसका शरीर किस तरह से हार्ड हो गया था और वो आस्था को पूरी तरह से पाना चाहता था, ये सोचकर आस्था को काफी मजा आ रहा था। फटाफट से वो भी मुस्कुराते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दादाजी भी आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट देख चुके थे, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा के दूध लेकर आने के बाद नानी माँ ने वसुंधरा को घूरते हुए कहा, अरे तुम्हें जितना कहा जाए क्या तुम उतना ही काम करती हो? देख ये छोटा बच्चा है, इसने अपना डायपर भी गंदा कर लिया, जाकर इसका डायपर भी बदल ला। नानी माँ की इस बात पर वसुंधरा का मुंह बन गया और वो नाखुश होकर सोचने लगी कि क्या ये बुढ़िया किसी और से ये काम नहीं करवा सकती, क्या अब ये बच्चे का डायपर मुझसे ही बदलवाना चाहती है। नानी माँ वसुंधरा के मन की बात समझते हुए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू क्या सोच रही है, तुझे पता है अगर तू नॉर्मल दादी होती तो आज तू अपने पोते के लिए ये सारे काम खुशी खुशी कर रही होती, लेकिन तुझे तो अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा दौलत चाहिए, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से तो तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, चल फटाफट से काम कर। अब जैसे ही नानी माँ ने वसुंधरा पर तंज कसा तो वैसे ही अभिमान जी घमंड के साथ मुस्कुरा उठे। वहीं वसुंधरा अभिमान जी को खा जाने वाली नजरों से आईब्रो सिकोड़कर देखने लगी। उसे अभिमान जी का इस तरह से मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार उसकी नज़र अभिमान जी पर फिसल रही थी। वहीं कोई और भी था जो ये सारी घटनाएं अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब देर ना करते हुए वो तुरंत नानी माँ के सामने आया और उनके सामने घुटने टिकाकर झुककर बैठ गया और अपने चेहरे पर नकली अफसोस भरे भाव लाकर दबी हुई आवाज में बोला, नानी माँ, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करती हैं, तो क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकती? मुझे बचपन से लेकर आज तक जिस माहौल में रखा गया, मैं उसी माहौल के अकॉर्डिंग बनता चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है नानी माँ? अगर मेरे बाप को मेरे होने का एहसास ही नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती? फिर थोड़ा रुक कर उसने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इसीलिए आप शायद मुझे सुधारना चाहती हैं, जो कि आपका एक माँ होने का नाते फर्ज बनता है, लेकिन क्या आप मुझे नौकर बनाकर ही सुधार सकती हैं? क्या आप मुझे अपना बेटा बनाकर नहीं सुधार सकती? हाँ, आपने मेरी अभी की जिंदगी देखी है, क्या मेरी जिंदगी पहले ऐसी थी? ये बोलकर वो अभिमान जी और नानी माँ के सामने इमोशनल होने का नाटक करने लगा, लेकिन नानी माँ तो बड़ी तेज थी, वो उसके इस इमोशनल ड्रामा को सक्सेसफुल कैसे होने दे सकती थी। वो तुरंत उसे घूरते हुए एकदम से बोली, अरे वीर बेटा, मेरा मतलब रामू बेटा। नानी माँ ने वीर का निकनेम रामू रख दिया था और वीर उन्हें एक अलग लेवल का नाम लगता था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, बेटा, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि तू सचमुच बदल गया है और काफी चेंज हो गया है, उस दिन मैं तेरा नाम वापस से वीर बेटा रख दूंगी। तब तू समझ जाना कि अब तू मिस्टर अभिमान सिंघानिया का बेटा और दामाद जी का छोटा भाई बनने के लायक हो गया है। लेकिन उससे पहले एक बात बता बेटा, जब से तू इस घर में आया है क्या तूने कभी इस बच्चे को गोद में लेने की कोशिश की है? ये तेरे सगे भाई का बेटा है, देख जरा इसे। ये कहते हुए नानी माँ ने जानबूझकर वीर का ध्यान अंश की ओर खींचा। अंश को देखकर वीर के मन में कुछ खास फीलिंग नहीं आई और उसके चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशंस थे। तब नानी माँ उसे देखकर कड़वाहट से हंसते हुए बोली, देखा तूने, तेरे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुझे इस मासूम बच्चे को देखकर कुछ खास खुशी नहीं हो रही है, लेकिन अगर तेरी जगह आहान, ध्रुव, आकाश पिटवा या सुमित पिटवा होते तो अब तक वो फूले नहीं समा रहे होते और वो आगे बढ़कर अंश को गोद में ले चुके होते, यही फर्क है तुझमें और उनमें। बेटा, जब तक तेरे अंदर की ये कड़वाहट और नफरत खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुझे माफी मिलना मुश्किल है। जब तू सुधर जाएगा तो हमें खुद ब खुद अपने आप ही पता चल जाएगा कि तू सुधर चुका है या नहीं। जैसे ही वीर को नानी माँ की बात समझ आई, वैसे ही वो तुरंत ही नजरें चुराकर वहाँ से जाने लगा। वीर को थोड़ा बुरा तो लगा था, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि जब तक नानी माँ इस घर में मौजूद है, तब तक उसकी यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली है। तो इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जल्दी से चला गया था। वहीं अभिमान जी फख्र भरी नजरों से नानी माँ की ओर देखने लगे। अभिमान जी नानी माँ पर गर्व करते हुए बोले, माँ जी, अगर आप आज इस तरह का कोई टास्क नहीं रखती और वीर को इस तरह से मेरे सामने प्रेस नहीं करती, तो शायद मैं तरस खाकर उसे एक बार फिर अपना बेटा बना लेता और उसे गले से लगा लेता। लेकिन वाकई में जब तक उसके मन से सच्चे जज्बात बाहर निकलकर नहीं आते और जब तक उसके भीतर की कड़वाहट और नफरत खत्म नहीं होगी, तब तक वो हमारा बेटा बनने के लायक नहीं है। और क्योंकि वो हमारा खून है, तो हम उसे बाहर भी नहीं छोड़ सकते। तो चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े या जिंदगी भर उसे घर का नौकर बनाकर रखना पड़े, लेकिन जब तक वो सुधर नहीं जाता, तब तक हम उसे इस घर में वो इज्जत और मान सम्मान नहीं देंगे जिसका वो हकदार है। अभिमान जी की ये बात कहीं ना कहीं वसुंधरा ने भी सुन ली थी और वो अंदर ही अंदर खींच कर रह गई थी। फिर वो रहस्यमय तरीके से हंसते हुए सोचने लगी, तो मुझे या मेरे बेटे को इस घर में मान सम्मान दो या ना दो, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि किस तरह से मुझे वो मान सम्मान हासिल करना है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वसुंधरा अपने ही ख्यालों में खो गई थी। फिलहाल अब सभी कपल्स वापस सिंघानिया मेंशन आ चुके थे। सबसे पहले सभी नहाने चले गए। नहा धोकर फटाफट सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान हर कोई अपने अपने पार्टनर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसी समय आस्था ने हल्की स्माइल करते हुए सबसे कहा,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने पसंद के कपड़े ले आए होंगे। कल हमें अपने फंक्शन की तैयारी करनी है, देखना कितना मजा आएगा। आस्था की बात में हामी भरते हुए सभी कपल्स एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। पूरे दिन की शॉपिंग और तैयारी के बाद सभी काफी थक चुके थे। तभी रौनक उबासी लेते हुए, हाँ, पता नहीं आप लोगों का क्या प्लान है, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है और कल हमें त्योहार भी मनाना है। मैं चाहती हूँ कि कल मैं बिल्कुल फ्रेश दिखूँ, और अगर अभी मैं टाइम पर सोने नहीं गई तो पक्का मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। वहीं आहान रौनक के सुनते ही अगले ही पल फट से बोला, हाँ बिल्कुल सोना चाहिए बेबी, अगर मेरी हवा हवाई को डार्क सर्कल आ गए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ और तुम्हें अच्छे से सुला देता हूँ। वहीं अरमान उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, जिस वजह से सभी को एक दूसरे से खुलकर बातें करने का मौका मिल गया था। सबके साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आस्था उठते हुए बोली, चलो अब चलते हैं, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आप सब जानते हैं कल हमारे आराध्य का जन्मदिन है। कल हम सबके साथ मिलकर बहुत सारी खुशियां मनाना चाहते हैं। कम से कम एक दिन के लिए हम अपनी सारी परेशानियां साइड में रख देते हैं। आस्था की बात सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। फिर सभी जल्दी जल्दी अपने कमरों की ओर सोने के लिए चले गए। आस्था भी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे बेसब्री से कल का इंतजार था। क्योंकि आज का सारा काम पहले ही पूरा हो चुका था और नानी माँ ने वसुंधरा और वीर से सारी तैयारी करवा ली थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर अरमान के बारे में सोचते सोचते सो गई। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था की खूबसूरत सी कमर की झलक घूम रही थी। वो बेचैनी से सोच रहा था, आखिर मुझे हो क्या गया है, क्यों ये मामूली सी लड़की मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है। किसी को भी ये हक नहीं कि वो अरमान सिंघानिया की नींदें उड़ा सके। अपने मन में यही ओटपटांग बातें सोचते हुए अरमान ने जल्दी से ध्रुव द्वारा दी गई कुछ दवाइयां ली और गहरी नींद में सो गया। फिलहाल अगली सुबह सभी लोग एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहे थे। मेंशन के हर एक कोने में एक अलग ही तरह का उत्साह भरा माहौल था। आस्था हर किसी को छोटे छोटे काम बांट रही थी, कितनी सारी मिठाइयां बनानी है, कौन सी सजावट करनी है, सब कुछ वो सबको ध्यान से समझा रही थी। उसने नानी माँ और बाकी लोगों को भी मिठाइयां बनाने की जिम्मेदारी दे दी थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करते हुए त्योहार की तैयारियों में जुटा हुआ था। आस्था चाहती थी कि जन्माष्टमी की तैयारी में कोई कमी ना रहे। उधर अरमान माथे पर हल्की भौहें चढ़ाते हुए ये सारी सिचुएशन को चुपचाप देख रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे मेंशन में इस तरह से त्योहार मना रही है, जबकि मैंने इसे साफ साफ मना किया था। अरमान एक बार फिर पर्सनली जाकर आस्था को डांटना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने खुद को रोक लिया। फिलहाल अपना मन शांत रखने के लिए उसने स्टडी रूम में अपना काम जारी रखने का फैसला किया। अब धीरे धीरे रात का माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सभी कपल्स भी सज धज कर तैयार हो गए थे। सबने जो भी रैंडम कुर्ते पजामे उठाए थे वही पहन लिए थे। वहीं आस्था, जो कि अरमान के ठीक बराबर वाले कमरे में ही तैयार हो रही थी, वो सज धज कर बाहर आई। आस्था ने नानी माँ को पहले ही बता दिया था कि आज अंश को वो तैयार करेगी, इसलिए नानी माँ ने अंश को कान्हा जी के जैसे कपड़े पहना दिए। अंश छोटा सा कृष्ण बना हुआ था और वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अंश को देखते ही आस्था ने अपनी आंखों से काजल निकालकर अंश को नज़र का टीका लगा दिया और अंश को लाड प्यार करने के बाद उसने नानी माँ के कानों में धीरे से कहा, नानी माँ, क्या आप अंश को कान्हा बनाकर एक बार अरमान जी के सामने ले जा सकती हैं? हो सकता है कि अंश को देखकर उनके दिल की भावनाएं बाहर आ जाएं। कहीं ना कहीं इस बार आस्था अंश को अरमान के पास अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं लेने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि इस बार नानी माँ ही अंश को अरमान के सामने लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन नानी माँ इस त्यौहार में अरमान का सामना नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन वो अरमान का गुस्सा अच्छी तरह से झेल चुकी थीं, इसलिए इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। उन्होंने अभिमान जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप ही दामाद जी के सामने अंश को लेकर जाइए, हो सकता है कि अंश को देखकर उनका मन भी इस जागरण में शामिल होने का कर जाए। नानी माँ की ये बात सुनकर अभिमान जी ने तुरंत मुस्कुराकर हामी भरी और उन्हें आश्वासन दिया। मेंशन में पहले से ही सभी कपल्स तैयार होकर हॉल में मौजूद थे। दादाजी और बाकी सबने अरमान को इस बारे में बताने की कोशिश नहीं की थी कि वे लोग इस वक्त कहाँ फंक्शन कर रहे हैं। जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तब सबने तय किया कि वो रघुवंशी मेंशन में ही फंक्शन करेंगे। वहीं अरमान, जो स्टडी रूम में अपने काम में डूबा हुआ था, उसकी ब्लैक कॉफी का वक्त हो चुका था, इसलिए वो सीधा हॉल में आकर बैठ गया। और जैसे ही वो वहां आया, वैसे ही उसने देखा कि सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक तैयार हुई हैं और सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान्य भी एक से बढ़कर एक शानदार कपड़े पहने हुए थे। और तो और, उसके दादाजी भी पूरे जोश में लग रहे थे। ये सब देखकर अरमान की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तंगाकर वो चिढ़कर सोचने लगा, आखिरकार ये सब लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, जबकि मैंने तो इन्हें सिंघानिया मेंशन में किसी भी फेस्टिवल की मनाने की इजाज़त नहीं दी थी, तो ये सब लोग सच थच के आखिर कहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन तभी उसके कानों में एक छोटे से बच्चे की किलकारियों की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसने उस आवाज़ का पीछा किया। उस वक्त अंश अपने हाथ में पड़ी हुई छोटी सी बांसुरी से खेल रहा था, कभी उसे मुंह में ले रहा था, कभी उसे देख देख कर हंस रहा था। अंश को देखकर अरमान पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। नानी माँ ने अपने हाथों से अंश के लिए एक छोटा सा मुकुट बनाया था, जो उन्होंने अंश को पहना दिया। अब छोटा सा अंश कान्हा जी बड़ा ही प्यारा लग रहा था।